पक्षी बचपन से ही विद्यानुरागी थे, सब विद्यानुरागी। सेवा के संबंध में आप लोगों को बतलाया जो पत्ता देना, झाड़ू देना, लोगों को पानी देना, नमक देना, ये सब, फिर झाड़ू उड़ू दे करके साफ करना इनका ये पहले काम। सरकारी अमान न करना है, एक वैष्णव मठों में एक प्रधान कार्य है। इतना शिफ्ट, इतना तेजी से ये बनाते थे सब्जी, ये इसका हिसाब नहीं। इधर देख रहे हैं, इधर घर का
खाई याद रखेंगे, छोटे बड़े
और छोटा बड़ा नहीं, एक साइज का। गुरु महाराज जी की सेवा करते समय इनको 104 बुखार हो गया और सब मठ में आए हैं बाहर के अतिथि लोग, वैष्णव लोग आए हुए हैं और कोई दूसरा आदमी रसोई बनाने वाला नहीं, कोई भी नहीं। उस समय में कहते हैं तुम सोया हुआ है, बुखार तुमको आया है, जल्दी उठो। एकदम डांट करके उठा दिया और वो आकर के 104 डिग्री में रसोई बनाया, सब काम किया। अरे जाओ, अरे ये सब काम करके तब जाकर फिर सो। अभी 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 किस होगा ऐसा, कोई करेगा 104 डिग्री बुखार में सब सोया? उसमें आदमी उठ ही नहीं सकते हैं, चिंता नहीं की जा सकती। ऐसे से मायापुर में बाढ़ आई थी, बावन महाराज जी के मुख से मैंने सुना। हम लोग जब गुरु जी के समय में एक साथ में रहते थे, प्रचार में भी एक साथ में गुरु जी के साथ में, और कोई नहीं जाए तो हम और वो और कोई, ये चार आदमी गुरु महाराज जी के साथ में मेदिनीपुर 24 परगना कहाँ कहाँ सब हम लोग उनके साथ में जाते, तो बहुत सी बातों को जानने का अवसर है। वो कहते एक बार मायापुर में बाढ़ आई तो वो बाढ़ में गिर गए, तो वो नौका लेकर के, नौका चलाने में एक्सपर्ट होते हैं पूर्वी बंग वाले, तो नौका लेकर के और बाढ़ में गए। इतने में खूब जोर से करंट आया और उनकी नाव को एकदम धारा में लेकर के डाल दिया। अब तो ये बड़ी भारी विपत्ति में पड़े। इतने में एक कोई पेड़ मिल गया, तो पेड़ को इन्होंने पकड़ लिया और नौका को उसमें से लगाया। इतने में देखा कि ऊपर से सांप ऐसे ऐसे सब कर रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं है जाने का, उस पेड़ पर ही आश्रय दिए हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं, आपका जैसे इधर तक सांप यदि गिर जाए तब तो फिर मजबूत। भगवान का नाम लेकर के मैं चुपचाप पेड़ को पकड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में लोगों को मालूम पड़ा तो फिर से लोग रो करके मल्ला सब लेकर के हमको बचाने के लिए आकर के सब लेकर के
अकेला ही
अकेला खड़ाऊ पहन करके
बेलगाछ
और बेलगाछ के ऊपर में या और पेड़ों के ऊपर में सब चढ़ रहे थे। मैं भी जब आया तो मैं भी खड़ाऊ पहन करके ही 4 माइल 5 माइल 6 माइल 7 माइल पर चलता था, कलकत्ता ही चल गया था। और मोटा धोती ये सब हम लोग नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है। मठ में चाहे शीत हो चाहे जाड़ा हो, कितना बैराग्य के साथ में रहते थे। अब के आदमी कल्पना नहीं कर सकते कितना बैराग्य के साथ में। हम लोग भी बड़ी बड़ी नौकरी करते थे, मठ में आकर के मार्किंग का ये वो भी इतना तक थी। और किस प्रकार से बैराग्य रहते थे, दिन रात सेवा में लगे रहते, उनको तो और फुर्सत नहीं, मठ का सारा भार उनके ऊपर है। गुरु जी तो बाहर ही घर में। इसके बाद में फिर वो प्रेस के इंचार्ज से छुड़ा नहीं बने, प्रेस में पत्रिका आरंभ हुई हमारे आने के बाद ही में, गौड़ीय पत्रिका। नरसिंह महाराज जी थे, उनके चचा जी थे, उनके पिताजी के बड़े भाई,
उन्हें तो प्रभुपाद शिष्य थे।
प्रभुपाद जी के शिष्य थे, नहीं नरसिंह महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य थे और श्रीधर महाराज जी से संन्यास लिया, किंतु बड़े पक्के आदमी। गुरु जी को और सब लोगों ने छोड़ दिया, नरोत्तम प्रभु और सब लोग, किंतु इन्होंने कहा जा रहेंगे तो सिंह के साथ में रहेंगे, बकरी के साथ में,
भेड़ के साथ,
और उनके साथ में रह सकते हैं। जब स्कूल स्थापित हुआ तो गुरु जी खुद बतलाते थे कि सब स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती थी। हमने कहा कि हमारे स्कूल में रविवार को छुट्टी नहीं रह सके, एकादशी को छुट्टी रहेगी। तो गवर्नमेंट इसके लिए आपत्ति कर लगाया, नहीं जैसा सबका स्कूल है वैसा रहे। हमें मैनेजमेंट आपका से होता है ऊपर, किंतु ये सब हम लोग करेंगे। जब ये किस थ्योरी से होता है, हमारी सनातन भारतवर्ष की परंपरा से होता है ना, अंग्रेजों का के भाव से और उनके संस्कृति से होगा। हम लोग रविवार को नहीं, हम लोग करेंगे तो नहीं तो गुरुवार को करेंगे। गुरुवार माने क्या, अथवा एकादशी। उन्होंने कहा जिसे लड़के सब विषय में फर्स्ट रहे और एक धर्म का पीरियड उसमें फेल रहे हैं तो हम सबको फेल रहे। और जगह है धर्म ऑप्शनल है, ऐसे उसे कोई मतलब नहीं। गुरु जी ने कहा हमारे स्कूल में यही होगा, धर्म की परीक्षा होगी, उसमें जो फेल हो जाएगा वो सब विषय में फर्स्ट करने पर भी
फेल माना जाएगा,
उसको फेल माना जाए। और ऐसा ही किया। अंत में मुसलमानों ने और दूसरे दूसरे लोगों ने गवर्नमेंट को लिखा कि हमारा लड़का सब विषय में पास है किंतु धर्म विषय में फेल है, तो इसको फेल कर दिया है। तो हाई कोर्ट तक चला किंतु अंत में हमारे गुरु जी की ही जय है। तो इस तरह से गुरु जी का स्पेशल विचार था, इसलिए उसी स्कूल में जो जो पढ़े सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति, भले वो गृहस्थ हो गए किंतु धार्मिक प्रवृत्ति के। मैंने कहा था ना कि बहुत छोटी उम्र में आए थे, बहुत छोटी उम्र में। वो प्रभुपाद जी के समय में आए थे, यहां तक कि श्रीधर महाराज जी से पहले आए थे। श्रीधर महाराज जी थे ना, वो अकाल पास करके हम समय 1934 या 35 में आए थे, 35 या 36 में।
36 से प्रभुपाद अशोक कट गए ना,
महाराज जी करीब करीब
30
में आए थे, बोल रहे थे हाँ तब तो 30 में आए। और मैं आया हूँ 1946 में, तो देखो कितना 16 वर्ष हम से पहले आए। और उस समय से गुरु जी की सेवा करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। कितने पहले 1930 में आए, इसलिए बहुत से बड़े बड़े लोग भी सिद्धार्थ पूज्यपाद महाराज इत्यादि भी उनसे पीछे आए हैं। तो उस समय में उन्होंने हरिनाम क्यों नहीं लिया,
तो
प्रभुपाद जी से हरिनाम लिया,
फिर माला का सिरा लिया उन्होंने।
अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो मठ छोड़ देना पड़ा, तो फिर इनको कहीं दूसरी जगह में हरिनाम लेने के लिए कहा, माला देने के लिए। उन्हें पर भी गुरु जी ने अंत में इनको संन्यास लेने के बाद में जो गौड़ीय वेदांत समिति कलकत्ता में स्थापित की, तब से अपने पास रखा और उनको हरिनाम दीक्षा सब मिली। और संन्यास हमारे साथ में ही 1942 महाराज जी का, सुदीका महाराज और हमारा, तीनों आदमियों का उस समय में संन्यास हुआ। उस समय में हम तीनों आदमी ने कहा हम लोग संन्यास के योग्य नहीं हैं, हम लोग नहीं लेंगे। पहले बामन महाराज जी से पूछा गया, त्रिविक्रम महाराज से उम्र में सबसे बड़े हैं, वो करीब करीब 78 वर्ष के होंगे। उसके बाद बामन महाराज जी 74 वर्ष के या 75 हैं,
73
और मैं इनसे भी 2 वर्ष छोटा है।
एक बार
कोई एक बार तो त्रिविक्रम महाराज जी से पूछा गया महाराज मैं संन्यास नहीं लूंगा तो क्यों तो प्रभुपाद जी इतने बड़े विद्वान थे नहीं महाराज कितने बड़े विद्वान थे सौसी महाराज कितने बड़े विद्वान थे गुरु महाराज जी कितने बड़े विद्वान हैं और सबको देखते हैं कितने बड़े बड़े विद्वान और सभी लोग नहीं है मैं नहीं लूंगा तो बाम महाराज जी से पूछा गया उन्होंने कहा सब हम भी नहीं तो हमसे पूछा गया तो राजा हम भी नहीं तीनों आदमी हम लोग नहीं रहे तो नागसिंह महाराज जी बोले हमसे आकर के संन्यास नहीं लगा कि नहीं क्यों अत हम योग्य नहीं तो योग्यता तुम्हारी गुरु जी देखेंगे ना तुम देखेगा गुरु जी देखते हैं ना तुम देखेगा तुम अपने लाभ के लिए नहीं लेगा ना गुरु जी की सेवा के लिए लेगा गुरु जी जो चाहते हैं वो होना चाहिए कि तुम जैसा होना है तो घर में क्यों नहीं रहा बड़े युक्तिवादी थे तो हमारे दिमाग में आ गए हमने कहा जैसा अच्छा मैं लूंगा चाहे जो कुछ हो जाएगा गुरु जी यदि नंगता रखेंगे तो नंगता रहेंगे संन्यास ले देंगे तो संन्यास ले लेंगे लाल कपड़ा दे देंगे वो ले लेंगे जो कुछ कहेंगे वही करूंगा अपने विचार से अब नहीं करूंगा तब बाम महाराज जी से पूछा तो उन्होंने हम नहीं ले और जैसे तुम नहीं लगा तो त्रिविक्रम महाराज से पूछा वो भी राजी नहीं थे और जैसे तब अकेले नारायण महाराज इनका गौर नारायण का अकेले संन्यास होगा गुरु महाराज ने कहा जी अकेले ही इसका होगा और किसी का नहीं होगा जब तैयारी पूरी हो गई तो फिर इन लोगों ने कहा जी इनका होगा भाई जिस विचार से ये ले रहे हैं जो गुरु जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए हम योग्य हैं तब फिर हम लोग भी लेंगे अंत में वो लोग भी राजी हो गए तो इस तरह से तीन आदमियों का पहला संन्यास हुआ सचमुच में मैं देखता हूं कि ये दोनों संन्यास के यथा उपयुक्त है अभी तो मैं जैसा संन्यास का देख रहा हूं पर गिर गया है जिनको कोई सिद्धांत का ज्ञान नहीं विचार का ज्ञान नहीं कोई भागवत इत्यादि में कोई प्रवेश नहीं कुछ जानते नहीं वो लोग भी संन्यास ले रहे हैं तो इन लोगों की उस दृष्टि से देखें तो कितनी योग्यता है संन्यास की सचमुच में योग्यता यही है कि मैं गुरु जी की सेवा करूंगा यही उनकी योग्यता है बाण महाराज जी ने प्रारंभ से जो सेवा की है वो आदर्श है घोड़िया पत्रिका की और गुरु महाराज ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब एक बार डिक्टेशन दे देते हैं इसके बाद में नहीं देखते हैं कुछ और यही सब कुछ करते हैं पत्रिका बामन महाराज ही चलाते थे कहां कहां से कैसे कैसे प्रबंध गुरु महाराज जी एक प्रबंध दे देते थे और बामन महाराज कहां कहां से सब चुन चयन करके कैसे कैसे सब ये सब उस समय में ये सब नहीं था कैसेट फैसेट कुछ नहीं था किंतु वो सबको ऐसे कहां कहां से लिखे हुए कौन कौन पत्रिका में से लेकर के और उसको चलाते थे पवन महाराज जी बड़े लज्जा वाले व्यक्ति थे इसको लज कोंपड़ कहते हैं
कन्या राशि थे
बहुत लज्जालू किसी से बोलेंगे नहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कोई आदमी आने पर उनसे बातचीत नहीं करते हैं अभ्यर्थना नहीं करते हैं किंतु बात ये नहीं लोग समझते नहीं बहुत लजालू स्वभाव के हैं बातचीत भी बहुत कम करते हैं अब वो बातचीत भी करते हैं प्रचार भी करते हैं पहले उनको पाठ करने के लिए दिया जाता था हमारे समय में भी देखा है ब्राह्मण पाठ करने एक तो बोलते नहीं थे गुरु महाराज जी हमको कहते थे पाठ करो हमको बंगला नहीं आती थी तो भी जरा सुर से ये बयार को सुर से पढ़ता था और कीर्तन जानता था थोड़ा सा कीर्तन करता था कीर्तन कर देता था तो गुरु जी कहते थे यदि कुछ भाव भी सुझाते जाए कहीं पर ना तो हमको कह देते और हमें लज्जा नहीं थी जो कुछ आए ना आए कह दिया तो हम उठ करके बोलने लगते थे इसलिए हमको कहते। बांग महाराज जी को एक बार हमको याद है, हम लोग कहीं प्रचार गए थे, बांग महाराज से गुरु जी ने तुम पाठ करो, महाराज बड़ी विपत्ति में फंस गए, अब क्या करें, पाठ कैसे करें। मैंने वो चेतन श्रीमद भागवत लेकर के भागवत पढ़ रहे हैं, उसका श्लोक वो तो सब उच्चारण बहुत सुंदर और उसमें जो अनुवाद किया है बस उसको पढ़ करके फिर दूसरा श्लोक फिर अनुवाद बड़ी
बोले
थे बोलते हैं बहुत लजालू स्वभाव। गुरु जी ने देखा कि इसको कैसे क्या करें। गौड़ीय पत्रिका के वो इंचार्ज थे, संपादक थे, संपादक नहीं माने करते तो वही सब कुछ, वो प्रकाशक थे। उनको कहा तुम प्रचार में जाओ, बस उनसे पत्रिका का वो लेकर के नव जोगेंद्र नहीं वो था विश्वनाथ, उसको लेकर के क्या देखें जाओ। बाबा महाराजी बहुत दुख हुआ जी, हमारा मठ छोड़वा दिया, चिचुड़ा छोड़वा दिया, प्रिय छोड़वा दिया, और मैं क्या करूं, बहुत दुखी हुए।
और ये राग हो गया, दुख हो गया,
राग दुख शोक जाग
मोह सब
सब कुछ उनको हो गया, बहुत दुखी होकर के बेचारे। आज जब लौट करके आए तो एकदम बदल गए, अब प्रेस में नहीं रहे, और तब से जो निकले वो मैंने प्रतिज्ञा कर दिया उन्होंने बिगड़ करके, अब हम प्रेस का काम जो लगाएंगे भी तो नहीं करेंगे। तो वो सचमुच में ऐसा ही हो गया, फिर प्रेस में वो नहीं लगे प्रचार करने, अब तो दो दो तीन तीन घंटा व्याख्या और क्या क्या करने लगे। और दूसरी बात, एक समय वो बीच बीच में प्रेस में रहते हुए कभी कभी दो एक दिन के लिए निकल जाते थे, कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। उनकी एक विशेषता ये है, क्या करेंगे ये बोलेंगे नहीं, कहाँ जाना है ये भी नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं कहेंगे।
पर मैं समय
बोलते ही ना जी कुछ जाए, रात में 9 बजे चाहेंगे, 8 बजे एक बार 8 बजे रात में वहां से निकले, चुचुड़ा से गाड़ी पकड़ करके कलकत्ता हो करके कृष्णनगर काशीनगर के पास में। तो जब स्टेशन जयपुर में उतरे तो
जयनगर
उतरे, तो उतर करके और वहां से चले पैदल, और कोई उस समय उपाय नहीं था, जाना है करीब करीब 3 मील 4 मील, 4 मील जाना है, रात हो गई है 11 बज गया है, और उस समय में वो उनको जाना है वहां पर, रास्ता बड़ा बीहड़। एक जगह आए तो देखा जैसे रात में 12 बजे करीब में उत्सव हो रहा है, नदी के किनारे विवाह हो रहा है। तो विवाह में पूरी तूरी सब बन रही है और क्या क्या हो रहा है और नाच गान तमाशा हो रहा है। इतने में जो विवाह वाले बराती थे, लड़की का बाप जैसा, वो आकर का उनको प्रणाम करके कहा महाराज जी
लड़की को आशीर्वाद दे दीजिए,
आप लड़की को थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए चलिए, आशीर्वाद देकर के सब जाए। महाराज जी मैंने तो उस समय तो ब्रह्मचारी थे, शायद सफेद कपड़ा ही था उस समय की, लाल कपड़ा था नहीं याद है। तो उस समय में छोटी दुबले पतले एकदम मोटा था, अब हो गए हैं। तो ये कथाएं बच्चों को सुनाते थे और रोंगटा खड़ा हो जाता, ऐसे बच्चों को कहानी कहने में बड़े पटू। तो वो बच्चों को सुना रहे हैं, जैसे मैं वैसे जब वहां आया तो देखा जब बारात और लड़की वाला करा जी आशीर्वाद दे दीजिए, अब उसके चारों पांच तरफ से खड़े हो गए जी चलिए। देखे कि क्या करें, से हमको कुछ डर भी लगा, तो कहते ये शादी हो रही है क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, शादी ये समझ भी नहीं सके जैसे ये कोई कुछ है, सचमुच शादी ही है ऐसा। थोड़ी देर के बाद में ये हरि नाम करने लगे, थोड़ी दूर जा करके और वो आगे आगे ले जा रहे हैं बड़े आनंद से, यदि चले गए होते तो प्राण बचना बड़ा भारी असंभव था। फिर से क्या सोचा और हरिनाम करते करते फिर वहां से चले आए, फिर बाधा नहीं दी। हरिनाम करने लगे जोर जोर से तो भाग गए। जब यहां आए तो पीसी माँ ने उनसे पूछा, जा रही बाबा तुम एखंड उठे पीछे आसू कोई माछ खाने तो भीषण अवस्था, वो भूत भूत सब बगल भी आते भूत रहते हैं। तो वहां तो बारात थी, वहां तो भूत का कोई बात, अरे वो बारात नहीं थी, कोई शादी शादी नहीं, वो तो भूत थे। तब ऐसा कर
গরম হয়ে যখন চলে যেতাম পরমদেব বলতে মল্লার দৌড় মসজিদে দেখ ওই পিসি বাড়ি গেছে কোথায় যাবে।
যখন গুরুজি বক্তৃতা করতে থে লিখনে বহুত তেজ, एक समय में एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 40
धर्मसभा
किया गुरु जी, जहां जहां कुछ होती बामन महाराज जी तक लिख लेते। कोई सब पत्रिका नहीं, ये सब छपता था। बोसपाड़ा में जब गौड़ीय मठ को छोड़ करके ये आए तो बोसपाड़ा में गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना हुई, तो ये भी थे रसोई सोई बना करके सब वैष्णवों को खिलाना पिलाना ये सब परिवेशन करना ये सब कर। उसी समय में श्रीधर महाराज जी गए थे और ये हमारे नृसिंह महाराज जी थे, अभय चरणार्थ संघ भक्ति वेदांत थे, और अभी हम लोगों में जीवित एक आदमी और है शांत महाराज, उसमें ब्रह्मचारी था, अभी उसकी उम्र 95 या 96 कहते हैं अभी भी है। तो वहीं पर गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना तब से ये है, उसके बहुत पहले से ही। एक समय की बात है, प्रेस में चुचुड़ा में वो प्रूफ देखते समय देखने के बाद उसका करेक्शन होता है, तो करेक्शन करने वाला कोई नहीं था, तो अपने ही मशीन चला करके और उसको प्रूफ निकाल करके और उसको करेक्शन करके और उसको चालू कर दिया प्रेस को और कागज देने लगे। इतने में हाथ पर वो ऊपर से पूरा हाथ होकर आ गया, हाथ एकदम पीस गया और अंगुल भी कट गई सर, लहू लुहान हो गया। गुरु महाराज जी अपने घर में थे ना, जैसे ऐसा हो गया गुरु महाराज जी भी रोने लग गए और जल्दी से उनको पकड़ करके बस एकदम सीधा कलकत्ता ले गए और कलकत्ता ले जा करके मेडिकल कॉलेज में उनको 2-4 दिन रख करके ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ धीरे धीरे जब हुए तो गुरु महाराज जी उद्विग्न हो गए, उनके लिए रोने लग गए। वैसे गुरु महाराज जी बड़े गंभीर प्रकृति, कभी भी ऐसा नहीं देखा जा, किंतु उस समय में मठ में आ गया था, उस समय था मैं मठ में, तो मठ में नहीं था, गुरु जी के साथ में प्रचार से अभी आया हुआ था, हम अभी भी काम कर रहे थे, या मैं सीधा बाड़ी में आनंद के साथ में था उस समय। और भी एक बार वह स्वस्थ हो गए तो सब काम गुरु महाराज जी छोड़ छाड़ करके चले गए उनको लेकर के नैनीताल के पास में, कहा
शिमला,
शिमला में ले जाकर के उनको चिकित्सा कराया। अंत में उनके गुण हैं बतलाया, लज्जा पहला, अपनी कभी भी प्रशंसा नहीं करना, बहुत गंभीर रहना, स्मरण शक्ति अद्भुत, वाग्मिता भी है, लेखक अच्छे हैं, बहुत लेखक, गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र और सब कुछ बहुत से ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया है। अहंकार शून्यता है। दूसरी बात, किसको देते हैं कुछ, कभी भी नहीं कहेंगे किसी से जो मैंने उसको कुछ दिया है, है? ये उनमें विशेष गुण है। हम लोग हैं तो एक पैसा देंगे तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, और वो किसको क्या देते हैं ये किसी को भी पता नहीं, चुपचाप दे देंगे। कितना दिया, क्या दिया, कुछ किसी को पता नहीं। कोई शिष्य लेकर के, कोई कलकत्ता का शिष्य के पास में भी सबको विश्वास कर लेते हैं, तो विश्वास करके उसके पास में सब कुछ रख, तो वो घर चला गया। कितना ले गया किसी को पता है, आज तक नहीं लगा, अंदाज सभी करते हैं। लेकर के चला गया, क्या कमल का भाई ना, कौन
कमल,
कमल ही कोई पता है। और गुरु जी के अप्रकट हो जाने के बाद में मैं मथुरा में केशव जी गौड़ीय मठ में कुछ अदल बदल कर रहा था। हमारे पास में पैसा नहीं था और लोगों से परिचय भी नहीं था, मथुरा वालों से भी उतना भी कोई किसी से परिचय नहीं था, तो मैं कैसे बनाऊं, कैसे क्या करूं। किंतु आरम्भ तो कर दिया है। बाबू महाराज जी को पता लगा तो हमको चुपके से किसी ने नहीं जाना 5,000 रुपया पहले दिया, तो उसी से लेकर के आरंभ किया धीरे धीरे धीरे। ये सब तो कोई किसी को भी देंगे, कितने लोगों को क्या दिया होगा हमको तो पता नहीं, क्योंकि प्रणामी उनामी तो आती है, तो वो किसको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं किसी को नहीं लगता, छुपा करके रखते हैं। दान ऐसा ही होना चाहिए, इस हाथ से दान दें तो ये नहीं। और गोपनीयता, गोपनीय रखते हैं, बहुत इस दिशा में बहुत वाकिफ है, बहुत गोपनीय बात रखते हैं, कोई झट उनका मन का भेद नहीं ले सकता। आचार्य के लिए भी बहुत आवश्यक है, और शिष्य वात्सल्य तो पूछो मत, शिष्य बहुत वात्सल्य है। ऐसे लल्लू चप्पू शिष्यों से बात करेंगे सब शिष्य समझेगा जो हमको बहुत प्यार करते हैं, सबसे बड़ा प्यार करते हैं। हम लोग को उतना प्यार प्यार नहीं आता है जितना प्यार है, किंतु उनको बहुत प्यार करने आता है। तो शिष्य बात सुन रहे हैं, अभी भी वैराग्य उठी हुई है, वैष्णोचित जो गुण होना चाहिए उनमें गुण। सबसे विशेष बात है वैष्णव सिद्धांत में परिपूर्ण है, जानते हैं वो सब। और एक हम लोग जब जहां रहेंगे अंततः मैं रहूंगा, भाषण नहीं देंगे, देंगे ठेला ठेली करेंगे।
हम मथुरा से ना अपना असंध्या से बोले नवीन कारा से माए बोले जाकर तुले दिया चला जाओ,
हमारा हम हमारे सामने नहीं देंगे, कहेंगे आप कहिए, आप कहिए, आप बोलिए जोर से। लोग सब श्रोता देखते रहेंगे, हम लोगों में 5-10 मिनट बस इसी में लग जाएगा, आप बोलिए तो आप और हमसे कोई गलती भी हो जाएगी कुछ कहेंगे कि पीछे भी नहीं बस कहेंगे, जानते हैं। जैसे एक समय कहीं वक्तृता हो रही थी, मैंने श्यामानंद जी का यह श्याम सुंदर मंदिर है ना, तो उसको मैंने कहा दिया बलदेव विद्याभूषण जी का ये मंदिर बनाया हुआ है, किंतु है श्यामानंद प्रभु जी का। तो कुछ दिनों के बाद में हमसे बोले जैसे वो श्यामानंद जी का वो है बलदेव विद्याभूषण का, बहुत पीछे से बात प्रतिभाग वैसा खूब डायरेक्ट प्रतिभाग नहीं करते। तो हम जहां रहेंगे तो वैसे ही अभी भी हम ही को बोलने के लिए देंगे, कुछ लिखने पर कभी होगा तो कहिए आप ही लिखिए। ये दूसरों को सम्मान देना ऐसा ही, अपने अमानी और दूसरों को सम्मान देना, ये वैष्णवों का धर्म है। तो आज उनकी आविर्भाव तिथि है, जन्म तिथि नहीं है, आविर्भाव तिथि है। आज यहां तो डायरेक्ट रूप में उपस्थित नहीं होने पर उपस्थित हैं, कैसे उपस्थित हैं भगवान कहाँ रहते हैं
जहां गायन
तो वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर जरूर उपस्थित हैं। तो आप सब लोगों पर वो कृपा करें, आप लोग भी उनका आदर्श ग्रहण कर सकें, यदि सचमुच में वैसा बन सकें, वैसा रह करके भजन कर सकें, गुरु की सेवा कर सकें, वैष्णव की सेवा कर सकें, यदि तत्व तो ठीक है, उनके चरणों में पुष्पांजलि हुई, और यदि उनका आचरण और विचार नहीं ग्रहण किया तो जितना भी आप पुष्पांजलि देंगे उनके चरण में पुष्पांजलि नहीं है। इसलिए आप लोग परिश्रम करेंगे, वैसा साधन भजन करेंगे, उनके गुणों को अपनाने की चेष्टा करेंगे, उनके विचारों को भी ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, वैसे हरिनाम करने की चेष्टा करेंगे, सहिष्णु वैसा होंगे, तब उनके चरणों में पुष्पांजलि होगी। हम लोग उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी जैसी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, भगवत भक्ति है, वैसे हम लोगों को भी गुरु के चरणों में निष्ठा हो और वैसे हम लोग भी गुरु की सेवा कर सकें। आज यही कह करके वक्तव्य समाप्त करते हैं, फिर कभी होगा तो विशेष रूप से विचार करेंगे। आज यही मनिषाकुर्भ्युभ्यो महान।